आज हम लोग जनसंचार विषय जो कि उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम का एक विषय है उसके पाठ दो पर चर्चा करेंगे और इस पाठ का नाम भी जनसंचार है जिसके बारे में हम विस्तृत रूप से अपने शिक्षार्थियों को बताएंगे। तो आज जैसा कि हम लोग बात करने जा रहे हैं जनसंचार पाठ दो पर, तो आप लोग का इसका थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहूँगा कि जैसे आप लोगों ने हमारा FM सुना है जो एक सामुदायिक रेडियो है, या बहुत सारे आपने प्राइवेट FM भी सुने होंगे जो कि आप कार में सुनते हैं या घर में अपने रेडियो पे लगा कर सुनते हैं, साथ ही साथ आपने लाइव क्रिकेट की कमेंट्री भी सुनी होगी या टेलीविज़न पे क्रिकेट देखा होगा, साथ ही साथ और मैं कहना चाहूँगा कि आपने मनोरंजन के लिए संगीत भी सुना होगा, पत्रिकाओं को भी पढ़ा होगा, टेलीविज़न भी देखा होगा। और बहुतायत रूप से प्यारे शिक्षार्थियों आजकल हम लोग इंटरनेट की ओर चले गए हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि दैनिक जीवन में लगभग प्रत्येक कार्य हम लोग आज इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं। तो ये सब जो विधाएं हैं जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया है, ये सब कहीं ना कहीं श्रोताओं को संदेश संप्रेषित करते हैं। श्रोताओं को संदेश संप्रेषित करने का मतलब है कि संचार को ये निरूपित करते हैं। अब श्रोता जन है हमारे, चाहे शिक्षार्थी हों, चाहे जनमानस हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे अध्यापक हों या समाज के अन्य सुधी जन, तो वो किसी न किसी माध्यम से संदेशों को प्राप्त करते हैं और उन पर अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करते हैं। तो आज हमारा प्रयास रहेगा कि जनसंचार विषय के अंतर्गत जिस पाठ क्रमांक दो पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें हम लोग जनसंचार की परिभाषा करना जानेंगे, उनके कार्यों की व्याख्या करना जानेंगे, जनसंचार का उद्भव कैसे हुआ था इसको जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही जनमाध्यमों के रूप में जो विभिन्न इनके रूप हैं उनमें अंतर करना भी सीखेंगे और साथ ही साथ परंपरागत माध्यमों के अर्थ का वर्णन भी करना हम जानेंगे। आपको ये करना चाहिए कि जितने भी पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से किए जाते हैं प्यारे शिक्षार्थी, उनको ध्यान से आपको सुनना चाहिए। कहीं ना कहीं ये आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में जो कंटेंट दिया है उसकी ये व्याख्या करने का प्रयास रहता है हमारा। और साथ ही साथ हम इसको जब पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम कह रहे हैं तो हमारा ये भी प्रयास रहता है कि इन पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक सुगमता से पहुँचें और सजीव प्रसारणों के दौरान, जैसे कि ये कार्यक्रम एक सजीव प्रसारण आप सुन पा रहे हैं, इस दौरान आप फ़ोन से हमसे बात भी कर पाएँ, आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको भी पूछ पाएँ। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि जनसंचार का अर्थ क्या होता है। तो प्यारे शिक्षार्थियों देखिए, इसकी जो जनसंचार की एक सरलतम जो परिभाषा आपकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल में दी गई है, स्वमुद्रित सामग्री में दी गई है, वो है मशीनी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचारित लोक संचार। एक बार मैं दोहराता हूँ, मशीनी या इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचारित लोक संचार। इसका मतलब है मशीन या इलेक्ट्रॉनिक रूप जिसका कि हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो एक माध्यम का कार्य करते हैं और उसके द्वारा हम लोग क्या संचारित कर रहे हैं, लोक संचार, मतलब लोक के लिए संचार, जन के लिए संचार, जन समूह के लिए संचार, किसी व्यक्ति विशेष के लिए संचार, व्यक्तियों के समूह के लिए संचार। तो इसका मतलब है किसी माध्यम के द्वारा अगर हम अपनी बात को एक स्थान से बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, व्यक्ति विशेष तक पहुंचाते हैं और वो सफलतापूर्वक वहां तक पहुंच जाती है और उसका अर्थ भी निकाल लिया जाता है, तो इसकी व्याख्या हम जनसंचार के रूप में करते हैं और जिसका कि प्रयोग जो है पूरी दुनिया में होता है। लाखों करोड़ों लोग संदेश भेजने के लिए, संदेश पाने के लिए जनसंचार के विभिन्न विधाओं पर निर्भर होते हैं। अब जो बड़ा सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है प्यारे शिक्षार्थियों, वह यह होता है कि यह संदेश किस प्रकार से भेजे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि संदेश भेजने के लिए अनेक प्रकार के जनमाध्यमों का हम लोग प्रयोग करते हैं। ये जनमाध्यम समाचार पत्र भी हो सकते हैं, पत्रिकाएं भी हो सकती हैं, रेडियो भी हो सकते हैं, टेलीविज़न, इंटरनेट भी हो सकते हैं। बस आपको ये करना है कि जब भी आप इनका प्रयोग करें तो यह सोच के करें कि क्या मेरे द्वारा चयनित जनमाध्यम हमारे द्वारा भेजे जा रहे संदेशों को सही ढंग से उसके प्रापक तक पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा, मतलब रिसीवर तक हमारा संदेश ढंग से पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा। इसी का ध्यान में रखते हुए आपको अपने लिए माध्यमों का चयन करना चाहिए। अब एक यहाँ पे ये भी बताया गया है कि मीडिया यानी कि मीडियम शब्द से जो हम संचार के माध्यमों का एक बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं उसको कई कई बार हम लोग चैनल भी कहते हैं। आपने टेलीविजन चैनल का नाम सुना होगा कि फलार चैनल पे ये न्यूज आई, तो चैनल चैनल का मतलब है कि जैसे हम टेलीविजन माध्यम में कोई समाचार चैनल देख रहे हैं तो कहते हैं चैनल है, तो उसी को मीडिया मीडियम या संचार माध्यम का जो बहुवचन है उसको हम प्रयोग में लाते हैं। साथ ही साथ संचार के माध्यम को हम लोग संचार का चैनल भी कहते हैं। तो संचार के चैनल की हम लोगों ने बात कर दी, तो इसमें देखें कि एक जो छोटा सा तथ्य है उस पर आप बड़ा गौर कीजिए, क्योंकि आपको आज ये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के साथ साथ ये विश्वविद्यालयी शिक्षा तक भी आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। आपकी पाठ्यपुस्तक में लिखा हुआ है, आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में लिखा हुआ है कि जन माध्यम को कौन क्या कहता है, किस चैनल पर, किस प्रभाव के साथ। फिर देखिए इसी को एक चित्रात्मक वर्णन भी किया गया है, कौन कौन का मतलब हुआ कि जो संचार कर रहा है व्यक्ति, क्या कहता है मतलब संदेश क्या है, किस चैनल पर मतलब माध्यम क्या है। चैनल का मतलब है कि वो रेडियो पे कह रहा है, टेलीविजन पे कह रहा है, इंटरनेट पे कह रहा है, पत्र पत्रिकाओं के द्वारा कह रहा है, समाचार पत्र के द्वारा कह रहा है। कौन क्या कहता है, किस चैनल पर मतलब संचार, संदेश, माध्यम, किससे कहता है मतलब प्रापक, रिसीवर, किस प्रभाव के साथ, इम्पैक्ट, प्रभाव। तो एक जो सरलतम हम इसका चित्रण करते हैं परिभाषा का, तो हम पाते हैं कि कौन का संबंध संप्रेषक से है, क्या कहता है का अर्थ है कि संदेश क्या दिया गया है, क्या बोला या दिखाया जा रहा है वही संदेश है, इसको क्या समझ लिया गया है। इसका मतलब है कि जिस चैनल पर अर्थात माध्यम समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविज़न, किस चैनल पर इसको दिखाया गया है, किससे अर्थात संदेश को प्राप्त करने वाला व्यक्ति। तो एक जो सरलतम परिभाषा बनती है कि कौन क्या कहता है, किस चैनल पर, किससे, किस प्रभाव के साथ, यानी संचार, संदेश, माध्यम, प्रापक और प्रभाव, अगर इसको हम बिल्कुल ढंग से समझ लें प्यारे शिक्षार्थियों, तो मेरा विश्वास है कि पूरे जीवन पर्यंत आप जनसंचार की व्याख्या और परिभाषा करने में अपने आप को सक्षम और सबल पाएंगे। तो अब हम लोग जब बात कर रहे हैं किस प्रभाव के साथ, इसका मतलब है, सीधा सीधा मतलब है कि प्रत्येक मीडियम का या चैनल का संदेशों पर अपना प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं कहूँ प्यारे शिक्षार्थियों कि हम लोग रेडियो पर बोलें कि आपने लाल लाल कलर के सेब खाए होंगे, आपने हरे हरे रंग के आम खाए होंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं रंगों का वर्णन तो कर रहा हूँ लेकिन मैंने माध्यम का चयन गलत किया है, हमने रेडियो का चयन किया है। अगर यही बात हम टेलीविज़न के माध्यम से बताएंगे तो उसका प्रभाव स्वतः बढ़ जाएगा। तो एक बात और आगे हम लोग बढ़ते हैं कि एक सामाजिक संदेश जो हम रेडियो पे सुनते हैं उसकी गुणवत्ता, उसके प्रापक की संख्या और बढ़ जाएगी अगर हम उसके माध्यम का चयन और अच्छा कर लें, टेलीविज़न पे दिखाएं या इंटरनेट के माध्यम से दिखाएं। तो ये तो हो गई जनसंचार की बात, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जो लोग फिल्में बनाते हैं, समाचार लिखते हैं, रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं या फिर मान लीजिए विज्ञापन ही बनाते हैं, ये सभी कौन हैं, ये सभी संप्रेषक हैं जिनके की पास आपके लिए एक संदेश होता है। संप्रेषक के पास प्रापक के लिए संदेश होता है जिनको कि वो किसी चैनल के माध्यम से, किसी माध्यम से जैसे समाचार पत्र, रेडियो या टेलीविज़न, उसके द्वारा वो भेजते हैं। और जब प्रापक को वो सही प्रभाव के साथ मिल जाता है तो इसका सीधा अर्थ है कि जनसंचार का पूरा चक्र संपन्न हुआ। तो अगर हम लोग जनसंचार के कार्यों का वर्णन करना चाहें तो प्यारे शिक्षार्थियों ये कह सकते हैं कि समाचार और परिचर्चाएँ आपको सूचना प्रदान करते हैं, रेडियो और टेलीविज़न कार्यक्रम आपको शिक्षित कर सकते हैं, फिल्में तथा टेलीविजन धारावाहिक तथा कार्यक्रम आपका मनोरंजन करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जनसंचार के तीन महत्वपूर्ण कार्य हैं, सूचना देना, शिक्षा प्रदान करना और मनोरंजन करना। तो अगर आगामी परीक्षाओं में आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है या वर्कशीट में आपसे इसका उत्तर मांगा जाता है या TMA में शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र में आपसे यह प्रश्न किया जाता है तो आप इसका सीधा सीधा उत्तर लिखें। अगर प्रश्न पूछा गया है जनसंचार के क्या कार्य हैं तो आप लिखिए जनसंचार के कार्य हैं सूचना देना, शिक्षा प्रदान करना तथा मनोरंजन करना। तो मुझे विश्वास है कि आप पूरे अंक अर्जित कर पाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जनमाध्यमों के कुछ और भी कार्य हैं क्या। अब देख हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो लिखते हैं। अब लिखने का मतलब है कि आपके अंदर लेखन शैली अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे तो किसके लिए लिखेंगे? आप लिखेंगे तो रेडियो के लिए लिखेंगे, टेलीविज़न के समाचार बुलेटिनों के लिए लिखेंगे या फिर समाचार पत्र में कोई समाचार लिखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम प्रत्येक दिन प्रत्येक समय किसी भी घटना की सूचना किसी माध्यम के द्वारा देते हैं। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे हम लोग कहें कि एक हेडलाइन आती है कि नए राष्ट्रपति चुने गए, देश ने नया मिसाइल विकसित कर लिया या भारतवर्ष ने राफेल फाइटर प्लेन ले लिए। तो ये देखिए ये सब जो हैं सूचनाएं दे रही हैं। ये जितने भी मैंने अभी कथन बोले हैं ये सभी सूचना प्रद कथन हैं, इनके द्वारा हमको कोई ना कोई सूचना मिल रही है। तो इसका मतलब है कि ये सब समुचित रूप से प्रारूपित और लिखित संदेश हैं जो कि उन लोगों द्वारा दिए जाते हैं जिन्हें कि हम संप्रेषक कहते हैं। एक डॉक्टर किसी रोग की रोकथाम के लिए टेलीविज़न या रेडियो पर बोलता है, समाचार पत्रों में भी कई बार वो लिखता है। और साथ ही साथ आपने कृषि के कार्यक्रम भी देखे होंगे कि कृषकों को नई फसल या बीज या खेती के तरीकों के बारे में भी बताया जाता है। और दूरदर्शन पर आपने देखा ही होगा कृषि के लिए अलग से कृषि दर्शन चैनल भी चलता है। तो इसका मतलब है कि ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से हमारे किसानों को शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, उन्नत बीजों के लिए प्रेरित करते हैं, रासायनिक खादों को ना प्रयोग में लाने की बातें करते हैं, जैविक कृषि की प्रधानता के बारे में बताते हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि हम लोग जनसंचार के विभिन्न कार्यों के में जब चर्चा करते हैं तो उसमें हम लोग शिक्षा के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, शैक्षिक कार्यक्रमों का भी प्रयोग करते हैं। और तो और जो मुक्त विद्यावाणी या रेडियो वाहिनी आप सुन पा रहे हैं ये भी एक शैक्षिक कार्यक्रमों का ही रूप है। साथ ही साथ स्वयंप्रभा के जिन 32 चैनलों पर आपको दृश्य कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वो भी एक प्रकार से जन संचार के ही कार्य हैं, उनके द्वारा आपको शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो जनसंचार का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है प्यारे शिक्षार्थियों। और साथ ही साथ आप हमेशा देखेंगे कि पाठकों पर, श्रोताओं पर, दर्शकों पर इन जनमाध्यमों का हमेशा गहरा प्रभाव पड़ता है और इसी प्रभाव के चलते इन माध्यमों की भूमिका, इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। आप देखिए कि जब हम लोग टेलीविज़न पे कोई विज्ञापन देखते हैं तो हमारे घर में हमारे नौनिहाल बच्चे उस उत्पाद या सेवा को लेने के लिए ज़िद करते हैं। इसका मतलब है कि विज्ञापन से वे उत्पाद या उसकी सेवा खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं, इससे उनकी इच्छा को संतुष्टि मिलती है और अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वो उस उत्पाद को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और पुरातन काल में जाते हैं, प्राचीन काल में जाते हैं। हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यहाँ पे कृषि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित नहीं थी, लेकिन आज देखिए संचार तकनीक के चलते हम लोगों ने इतना उस पर विकास कर लिया है कि हम लोग विश्व की सबसे अच्छी कृषि भारतवर्ष में कर पा रहे हैं। हमारा जो कृषि मंत्रालय है वो कई सारी योजनाएँ लेकर के आता है जो लोगों में, किसानों में एक नई अलग जगाता है कि आप किस प्रकार से उन्नत बीजों का चयन करें, किस प्रकार से आप उर्वरकों का चयन करें और किस प्रकार से आप प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेकर के अपने कृषि उत्पादों को और अधिक आगे बढ़ाएं। और इसी के चलते शिक्षार्थियों खेती में नई तकनीक को अपनाते हुए जिस प्रकार की हरित क्रांति का हम लोगों ने सूत्रपात किया है उसको दिन पर दिन और आगे बढ़ाना जा रहा है, और उस बढ़ाए जाने में कहीं ना कहीं जनसंचार और जनमाध्यम अपनी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगा। मेरे मन में एक उदाहरण आता है हमेशा से पल्स पोलियो अभियान का। अब हम लोग बार बार कहते हैं कि भारतवर्ष एकमात्र ऐसा बड़ा राष्ट्र है जिसको कि हमने पल्स पोलियो के अभियान के द्वारा पोलियो मुक्त करने का पूरा प्रयास किया है, और आप विश्वास कीजिए कि भारतवर्ष में बिल्कुल पोलियो की इस भयावह बीमारी से हम लोगों ने छुटकारा पा लिया है। तो अगर हम लोग पल्स पोलियो अभियान की बात करें तो कहीं ना कहीं जनमाध्यमों के द्वारा ही और रचनात्मकता के प्रयोग से ही ऐसे संदेशों का हमने सृजन किया कि उन संदेशों को देखकर, उन विज्ञापनों को देखकर, उन पब्लिक सर्विस एडवर्टाइजिंग को देख करके हमारे जनमानस में एक चेतना का विकास हुआ, और उन्होंने दो बूंद जिंदगी की पी करके हमारे राष्ट्र को पोलियो की भयानक बीमारी से मुक्त किया है। तो एक चीज़ यहाँ पे और उत्पन्न होती है कि क्या किसी अच्छे संदेश को अच्छे जनमाध्यम के द्वारा प्रस्तुत करने मात्र से कुछ हो जाता है? तो मैं कहता हूँ कि नहीं, जन भागीदारी के साथ, जन प्रतिक्रिया के साथ, जन स्वीकार्यता के साथ में अगर कोई काम होता है तभी वो अच्छे से हो पाता है। और ठीक ऐसा काम पल्स पोलियो अभियान में हमको देखने को मिलता है, और वो दो बूंद जिंदगी की आज हमारे राष्ट्र से पोलियो को हटाने में मदद करती हैं और कहीं ना कहीं शत प्रतिशत रूप से सफल भी रही हैं। तो इसका मतलब है कि जन माध्यमों का हमारे दैनिक जीवन पर एक सटीक और लाभान्वित प्रभाव पड़ता है, और जन माध्यम हमें जीवन में एक सही दिशा की ओर ले जाने में सक्षम होते हैं, और विभिन्न जन माध्यमों का प्रयोग करके हम लोग अपने किसी निश्चित संदेश को एक बड़े जनमानस तक पहुँचाने का प्रयास कर सकते हैं और करते रहे हैं। जनसंचार शब्द जो है इसका विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है, और मानव ने ऐसा साधन खोजा जिसके द्वारा हम लोग एक संदेश को तीव्र गति से बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जब ये इस प्रकार की हम लोगों ने विधा खोज ली तो एक समय ऐसा था कि जब हम लोग समाचारों के लिए और संचार के लिए दूर दूर तक घोड़े की सवारी करते थे, कबूतरों का प्रयोग करते थे जिसको कि हम लोग एक डाकिये की तरह भी प्रयोग में लाते थे। तो उन सब चीज़ों से आगे बढ़ते हुए जब हम लोग और आपको मैं एक बात और याद दिलाऊं कि आपने कवि कालिदास का नाम तो सुना होगा, उन्होंने अपने महाकाव्य मेघदूत में यक्ष के साथ में, जो कि स्वर्ग के एक गायक थे, उनके साथ में बादलों के माध्यम से अपनी प्रेमिका को संदेश भेजने का उसमें जिक्र आता है। तो देखिए कि किस प्रकार से काल्पनिक तौर पे हम लोग एक संदेश को बादलों के माध्यम से ही लिखकर भेज रहे हैं, और उसको डिकोड किया जा रहा है, समझा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है। अब धीरे धीरे जब वक्त बदलता है, समय बदलता है, कागज तथा मुद्रण का आविष्कार हो जाता है, और कालांतर में समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ हो जाता है, और फिर हम देखते हैं कि 1835 में जब सैमुअल एफ बी मॉर्स द्वारा टेलीग्राफ खोज लिया जाता है, तब संदेशों को कूट करने में, संदेशों को कोडिफाई करने में हम लोग को बहुत अच्छी सहायता मिलती है। उसके द्वारा हम लोग बहुत लंबी दूरी तक संदेशों को भेज पाने में सक्षम पाते हैं। आज भी आपने देखा होगा कि एयरफोर्स या नेवी के जो संदेश भेजे जाते हैं उसमें एक मॉर्स की होती है, उस मॉर्स की के माध्यम से आप लोग एक छोटी सी आवाज़ निकाल निकाल के अपने संदेशों को इधर से उधर भेजते हैं। अब एक और अगला कदम इस संचार के क्षेत्र में हुआ कि किस प्रकार से मानवीय आवाज़ को संदेश के रूप में प्रेषित करना है। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लंबी दूरी तक का तार का प्रयोग करके मानवीय आवाज़ को संचार के एक नए युग में पदार्पित किया। मतलब 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने तार, जिसको कि हम लोग बेतार का तार भी कहते हैं, टेलीग्राफ भी कहते हैं, उसका आविष्कार किया, जिसके द्वारा संचार के क्षेत्र में क्रांति आई। आगे बढ़ते हुए 1901 में मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। तो श्रोताओं, ये वही रेडियो है जिसके माध्यम से आज आप ये कार्यक्रम सुन पा रहे हैं हमारे सामुदायिक रेडियो पर। बस फर्क ये है कि 1901 में जो रेडियो सुनते थे वो मीडियम वेव पे चलता था, आज जो आप हमारा सामुदायिक रेडियो सुन पा रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे आप सुन पा रहे हैं, एफएम पे सुन पा रहे हैं, और एफएम की गुणवत्ता आपको पता है कि एफएम पे बहुत स्पष्ट आवाज़ आपको सुनने को मिलती है। तो हम लोग बात अपनी आगे बढ़ाते हैं। कालांतर में 1947 में जब ट्रांजिस्टर की खोज हुई तो रेडियो ध्वनि संदेश को भेजने के लिए और अधिक एक लोकप्रिय माध्यम मिल गया, और साथ ही साथ जब 1920 में बेयर्ड ने टेलीविज़न बनाया तब तो एक क्रांति सी आ गई कि हम ध्वनि के साथ साथ चित्रों का भी प्रसारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करने लगे हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जन माध्यमों में हम लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, विज्ञापन, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट आदि को रखते हैं, तो आप हमेशा सोचते होंगे कि वास्तव में जनसंचार तथा जन माध्यम के बीच में अंतर क्या है। मतलब जब कोई व्यक्ति, जब हम लोग सुनते हैं कि जन माध्यम शब्द का उपयोग करता है तो आपके मन में हमेशा टेलीविज़न आता है कि टेलीविज़न एक जन माध्यम है, उसमें उसी ने हमको इसको बड़ा लोकप्रिय बनाया है एक जन माध्यम के रूप में। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब हमने मीडियम शब्द का प्रयोग किया तो इसका मतलब है कि मीडियम एक बहुवचन है। बहुवचन का मतलब है कि बहुत सारे माध्यमों के द्वारा आप लोग अपने संदेशों को भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से जो रेडियो टेलीविज़न ये हैं, ये एक तरीके से हमारे लिए जन माध्यम का ही कार्य करते हैं। इसमें जन का मतलब है कि विशाल संख्या में दर्शकों की संख्या। अब आप ये मान के चलें कि जैसे ये रेडियो कार्यक्रम हम लोग यहाँ से प्रसारित कर रहे हैं NIOS हेडक्वार्टर से, तो इसको बहुत बड़ी संख्या में हमारे श्रोता शिक्षार्थी सुन पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो वाहिनी एक जन माध्यम का कार्य करता है। तो शिक्षार्थियों, ये तो बात हो गई हमारे जनसंचार के उद्भव की बात, लेकिन जब हम लोग उद्भव की बात कर रहे हैं तो क्यों ना हम लोग कागज़ के उद्भव की भी बात करें कि कागज़ का आविष्कार कैसे हुआ, कागज़ का अन्वेषण कैसे हुआ। और आपको यकीन मानना चाहिए कि कागज़ का अन्वेषण एक क्रांतिकारी घटना थी। कागज़ के अन्वेषण से पूर्व चट्टानों पर, चमड़े पर, ताड़पत्र पर लिखा जाता था, और आपने देखा भी होगा अजंता एलोरा की गुफाओं में या कुछ अन्य प्राचीन चट्टानों पर भी ऐसे प्राचीन लेखन देखे होंगे। कभी आप बचपन में पिकनिक मनाने गए हों या किसी भ्रमण पर गए हों तो आपने वो लेखन देखे होंगे। और साथ ही साथ हम लोगों ने अशोक के स्तूप पर या ताड़पत्र पर संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अभिलेखों को भी देखा है, और विशेष प्रकार के जो अभिलेखागार हैं उनमें इनको संरक्षित रखा गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार किसी आर्काइव में जाएं और वहां इनको देखने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इनको संरक्षित किया गया है और किस प्रकार से इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है हम मानते हैं कि 105 ईस्वी में जब कागज़ का प्रथम प्रयोग चीनियों द्वारा किया जाता है तो उससे हमको पता चलता है कि कागज़ का इतिहास कितना पुराना है। कागज़, जिसको हम अंग्रेज़ी में पेपर भी कहते हैं, पेपर शब्द कैसे आया? पेपर शब्द आया जिस पौधे से इसको बनाया जाता था, पेपाइरस नाम के जिस पौधे से इसको सर्वप्रथम बनाया गया, जो कि मिस्र में नील नदी के तट पर उगता था, तो इसका नाम वहाँ से पेपायरस के चलते पेपर पड़ा, जिसको कि हम लोग अपनी मातृभाषा हिंदी में कागज़ कहते हैं। और कागज़ के जब आने के बाद हम लोगों ने देखा है कि संचार की दुनिया एक बहुत बड़ी दुनिया बन गई, और पठन पाठन का सारा काम हम लोग कागज़ पे ही निर्भर होकर करने लगे। साथ ही साथ आपकी पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक्स, कॉपी, परीक्षा प्रश्न पत्र, अलग अलग प्रकार के फॉर्म्स, शिक्षण संस्थान में दाखिला लेते समय जो आपने फॉर्म भरा था, वह आपकी उत्तर पुस्तिका, आपकी स्वाध्यन सामग्री, सभी इन कागजों पर मुद्रित होकर आपके हाथों में पहुंचती है। और तो और, सुबह सुबह जब समाचार पत्र आपको मिलता है, जिन पत्रिकाओं को आप पढ़ते हैं, और साथ ही साथ दीवार पर चिपकाए जाने वाले पोस्टर, जिनके बिना आप दुनिया की संदेशों की कल्पना नहीं करते हैं, वो सब भी कागज़ पर निर्भर होकर आपके हाथों तक पहुँचते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब जोहानस गुटनबर्ग ने 1439 ईस्वी में मुद्रण का आविष्कार किया, कागज़ के आने के बाद कागज़ का जो महत्व और बढ़ा, वो जोहानस गुटनबर्ग ने जब सर्वप्रथम 1439 ईस्वी में 1439 में जब मुद्रण का आविष्कार किया, तो मानव की विकास की विभिन्न विधियों में एक क्रांति सी आ गई, और सने सने साधारण लोगों के लिए भी मुद्रित सामग्री उपलब्ध होने लगी। एक समय ऐसा माना जाता था कि समाचार पत्र अति विद्वान और संभ्रांत व्यक्ति पढ़ते हैं, अमीर वर्ग पढ़ता है, लेकिन जब जोहानस गुटनबर्ग की मुद्रण तकनीक बाज़ार में तेज़ी से आई, तो उसके बाद वो विद्यालयों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों पुस्तकालयों में भी संरक्षित सुरक्षित होने लगी, लोग वहाँ पठन पाठन का कार्य करने लगे। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि मुद्रण की प्रक्रिया में गुटनबर्ग को क्यों याद किया जाता है, जोहानस गुटनबर्ग का क्या योगदान है, और तीव्र गति से छपाई करने में कंप्यूटरों का कितना योगदान है, DTP का कितना योगदान है, यह भी हम लोगों ने जान लिया है कि मशीनों के माध्यम से जो हम लोग मुद्रण करते हैं उसमें बहुत ही सस्ते दामों पर हमको मुद्रित सामग्री प्राप्त हो जाती है। अगर हम लोग अपने स्वाध्ययन सामग्री से जन माध्यम के विभिन्न प्रकारों पर थोड़ी थोड़ी सी बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें समाचार पत्र और पत्रिकाओं की बात की गई है। तो आपने पहले ही पढ़ा है कि कागज तथा मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्रों का विकास हुआ, मुद्रण का विकास हुआ, पत्रकारिता का विकास हुआ, पत्रिकाएं छपने लगीं, और 17वीं सदी में जर्मनी, इटली, नीदरलैंड जैसे देशों में खूब सारा प्रकाशन हुआ है, बहुत सारे समाचार पत्र नए नए आए, और वैश्विक धरातल पर मुद्रण जब इतना बढ़ने लगा, पत्रिकाओं में सूचनाओं का संकलन होने लगा, संप्रेषण आदि का कार्य मुद्रित माध्यम में होने लगा, सूचनाओं का चयन, घटनाओं, विचारों, सूचनाओं तथा विवादों को उचित संदर्भ में संपादित करके मुद्रित किया जाने लगा, उनको प्रस्तुत किया जाने लगा, तो आप मानिए कि तब एक नए आयाम के साथ कागज़ और मुद्रण तकनीक को जब हमने अंगीकार किया तो इसके विकास के साथ साथ ही एक नई क्रांति आई। और अगर हम लोग भारतवर्ष की बात करें प्यारे शिक्षार्थियों और श्रोताओं, तो हम लोग देखते हैं कि भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ ब्रिटिश काल के दौरान ही अंग्रेजों द्वारा किया गया था। बाद में जब राजा राम मोहन राय जी आते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी आते हैं, और फिर महात्मा गांधी जैसे हमारे राष्ट्रीय नेता जब एक समाज सुधारक के रूप में आते हैं, तब हम देखने को पाते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों से संघर्ष में किस प्रकार से भारत की वर्नाकुलर प्रेस और भारत की पत्रकारिता का उपयोग किया गया कि गांधी जी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के अधिकार हेतु जो संघर्ष प्रारंभ किया, जिसको कि हम लोग इंडियन ओपिनियन पत्र के रूप के पत्र के माध्यम से देख पाते हैं, और उसके बाद जब गांधी जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हरिजन समाचार पत्र का प्रारंभ किया, यंग इंडिया में उन्होंने लेख लिखने प्रारंभ किए, तो निश्चित मानिए कि वह एक क्रांति का युग था भारतवर्ष के लिए, और कहीं ना कहीं उसका भी बड़ा योगदान था मुद्रण का और समाचार पत्रों का, और हरिजन और यंग इंडिया का इतना प्रभाव था कि उसके चलते हमको अपनी स्वतंत्रता संग्राम में विजय प्राप्त हुई और भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया। तो इस के बारे में हम लोग ज़्यादा जानकारी अपने मुद्रित माध्यम वाले मॉड्यूल में लेंगे, उसमें आप अधिक से अधिक पढ़ पाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एक वितार संचार जब आया था 1835 में, जब हम लोग कूट के माध्यम से प्रयोग करके सैमुअल मोर्स की जो कूट विधि थी जिसमें हम लोग संदेशों को भेजते थे, और साथ ही साथ जब 1851 में अंतर्राष्ट्रीय मोर्स कोड विकसित किया गया जिसमें हम लोग ध्वनि के छोटे छोटे संदेशों से अपने कोडिफाइड मतलब कूट संदेशों को भेजते थे, तो वो भी एक क्रांति का समय था। बाद में विद्युत टेलीग्राफ आया, सेलफोन्स आए, और आज आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से सेलफोन एक संचार का उत्तम उदाहरण के रूप में अपने आप में स्थापित कर पाया है। अब एक और माध्यम हम लोग पढ़ते हैं कि छायांकन। छायांकन का मतलब है कि आपके मोबाइल में जो कैमरा दिया हुआ है, या आपके पास जो DSLR कैमरा है, उसके द्वारा जो भी आप चित्र खींचते हैं और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया साइट्स पे लगाते हैं, तो उसके विकास में भी थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से नाइस फोर नीफ से और लुई जैकमॉन डैगे ने, डैगे मतलब डैगुअर ने, हम लोगों के लिए फोटोग्राफी का विकास किया, और कुछ वर्षों तक जो हम लोग श्वेत श्याम छायांकन ही करते रहे, बाद में ऑयल तैलयुक्त सफ़ेद तरल इमल्शन का प्रयोग करके रंगीन छायांकन जब प्रारंभ हुआ, और समय समय आगे चल करके जब समाचार पत्र पत्रिकाओं विज्ञापनों में छायांकन का प्रयोग होने लगा, तो एक नई क्रांति का सूत्रपात हुआ। और 20वीं शताब्दी के अंत तक जब छायाकारों ने डिजिटल तकनीक का प्रयोग शुरू किया, जिसके चलते आज हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से जितनी भी फ़ोटो, जितनी भी हम लोग अपनी छवियां एक दूसरे के साथ साझा करते हैं वो एक क्रांति का सूत्रपात करती है। और आज हमारे सेलफोन में भी कैमरा लगा होता है और वो इतनी अच्छी गुणवत्ता का होता है कि आप बहुत से अच्छे सुंदर चित्र उसमें से खींच पाते हैं। साथ ही साथ आप वीडियो का प्रयोग करके फिल्में भी बना पाते हैं, जिन फिल्मों के लिए पहले हम लोग चित्रों पर निर्भर करते थे, स्टिल फोटोग्राफ पर निर्भर रहते थे, वह स्थायी तो होते थे लेकिन चलते नहीं थे प्यारे शिक्षार्थियों। और बाद में जब स्टिल फोटोग्राफ के विकास के बाद हम लोगों ने मोशन पिक्चर्स को जाना, चलचित्रों को जाना, तब एक नई दुनिया हमको देखने को मिली सिनेमा के रूप में। और इसी सिनेमा के द्वारा जब हम लोग देखते हैं कि कालांतर में जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के टॉमस एल्वा एडिसन तथा फ्रांस के लुमियर ब्रदर्स ने जब इन चित्रों को और आगे बढ़ाया तो चलचित्र का विकास हुआ। और हम लोग कह सकते हैं कि जो पहले चलचित्र मूक थे बाद में वो बोलने लगे। और 1927 एक ऐसा वर्ष था जिसमें कि हम देखते हैं कि मोशन पिक्चर्स, जिसको कि दादा साहब फाल्के ने भारतवर्ष में बढ़ाया था, और भारत की पहली जो टॉकी यानी बोलने वाली चलचित्र थी वो उसका विकास हुआ। और जो भारत का सबसे पहला चलचित्र था उसको हम लोग राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं। और भारत में जो सबसे पहला बोलने वाला चलचित्र था उसको हम लोग आलम आरा के नाम से जानते हैं। इन दोनों को आपको याद कर लेना चाहिए। कालांतर में आपको इन पर प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, चाहे वो आप NIOS की परीक्षाओं की बात करें या BGMC MMC करने के बाद आप जब भी परीक्षाओं में जाएंगे तो ये प्रश्न हमेशा आपको पूछने को आएंगे। और आप विश्वास मानिए कि जो फिल्में थीं प्रारंभिक काल में तो इन्होंने पौराणिक कथाओं का वर्णन किया, कालांतर पर ये सामाजिक मुद्दे पर आईं, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन पर केंद्रित होकर आपके समक्ष तक पहुंचती हैं। रेडियो के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा की है इस कार्यक्रम में। और हम लोग जानते हैं कि 1920 के दशक में हमारे पास रेडियो था और रेडियो स्टेशन जो है हमारा मुंबई में स्थापित हुआ था भारतवर्ष में, और उसके द्वारा हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाया। और साथ ही साथ जब हम लोग 1920 का वर्णन करते हैं तो देखते हैं कि बेयर्ड द्वारा 1920 में खोजा गया टेलीविज़न सने सने और आगे बढ़ा। और जब भारत का पहला टेलीविज़न स्टेशन दिल्ली में स्थापित हुआ 1939 में, तो एक नई क्रांति आई और देखा गया कि पहले जो कार्यक्रमों का प्रसारण हम लोग श्वेत श्याम में देखते थे उसको हमने 1982 में रंगीन टेलीविज़न के माध्यम से और देखा, जिसको कि एशियाड के दौरान लगाया गया था। और आज हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में DTH की सुविधा उपलब्ध है, हम लोग डिजिटल माध्यम से देखते हैं, हाई डेफिनेशन टेलीविज़न देखते हैं। तो इतनी क्रांति आ गई है और ये क्रांति सने सने और आगे बढ़ती हुई न्यू मीडिया की तरफ जाती है। जो टेलीविज़न कार्यक्रम हम टेलीविज़न के माध्यम से देखते थे प्यारे श्रोताओं और शिक्षार्थियों, आज हमको वो कंप्यूटर के माध्यम से, सूचना तकनीक के माध्यम से, न्यू मीडिया के माध्यम से कंप्यूटर पर और अन्य माध्यमों पर मिल जाती है। और हम लोग देखते हैं कि इसके चलते जनसंचार में एक नई प्रक्रिया जुड़ी जिसको कि हम लोग डिजिटल कन्वर्जेंस कहते हैं। कन्वर्जेंस का अर्थ होता है मीडिया के विभिन्न प्रकारों का, विभिन्न प्रारूपों का, चाहे वो मुद्रित हों या फोटोग्राफ हों, फिल्म हों, रिकॉर्डेड हों, संगीत हों, रेडियो हों या टेलीविज़न के कार्यक्रम हों, इन सभी को एक मिश्रित रूप से अगर हम लोग न्यू मीडिया कंप्यूटर इंटरनेट पर ले आते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का अध्ययन है कि मीडिया के विभिन्न प्रकारों का, विभिन्न प्रारूपों का एकत्रीकरण करके उनको एक माध्यम के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत कर देना। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको अन्य मॉड्यूलों में दी जाएगी, न्यू मीडिया के मॉड्यूलों में दी जाएगी। लेकिन अगर हम लोग भारतवर्ष की बात करें तो हमारे देश में एक समृद्ध विरासत रही है, हमारे देश में सशक्त मौखिक परंपरा रही है, हमारे देश की जड़ें इतनी मजबूत हैं, उसकी संस्कृति इतनी उत्तम और महान है और उसकी विविधता इतनी अधिक है कि जितनी हम लोग कल्पना करें उतनी ही कम है। भारत में जनजीवन जो मुख्य रूप से धर्म आधारित था, कृषि आधारित था और बड़ी लोग गहराई से इन पे प्रभावित रहते थे और ऋतुओं का भी असर हम पर पड़ता था, मेले का आयोजन हम लोग करते थे, त्यौहार मनाते थे, साथ साथ रहते थे, एक साथ हर्षोल्लास के साथ जीवन यापन करते थे। और एक बात जो सबसे अच्छी है कि भारतवर्ष में विविधताओं के साथ, इतने बड़े जन समुदाय के साथ हम लोग रहते हैं तो इनमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों के साथ संप्रेषण करने के लिए हम लोग अन्य माध्यमों का भी प्रयोग करते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम लोग कहें कि हम लोग रामलीला का आयोजन करते हैं, हम लोग रामायण की कथा का वाचन करते हैं, हम लोग कथा वाचन लोक संगीत, नुक्कड़ नाटक और कठपुतली के माध्यम से देखते हैं, तो इन सभी माध्यमों का जिसका हमने जिक्र किया है, ये हैं परंपरागत माध्यम जिनके बारे में आपको 7A मॉड्यूल जो है वो आपको विस्तृत जानकारी देगा। और पहले की बात मैं आज फिर बताता हूँ कि 7A और 7B मॉड्यूल में से आपको सिर्फ एक मॉड्यूल का अध्ययन करना है और उन दोनों का अध्ययन करके आप जान पाएंगे कि परंपरागत माध्यमों का कितना प्रभाव हमारे जनमानस पे पड़ता है। तो प्यारे शिक्षार्थियों श्रोताओं, आज हम लोगों ने आपके जनसंचार विषय के दूसरे पाठ जनसंचार पर विशेष चर्चा की है और मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा कार्यक्रम। नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों और श्रोताओं।